बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 27 मई दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए, लेकिन क्या हुआ उन वादों का जो सरकार ने किए थे? क्या अपने दावों पर खरी उतरती है मोदी सरकार? क्या सोचते हैं आप? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामा सेशन, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल कमांडर सबजार अहमद भट्ट समेत 2 चरमपंथियों की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। भट्ट की मौत की खबर के बाद त्राल में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की तरफ पत्थर भी फेंके। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सबजार भट्ट के अलावा एक अन्य चरमपंथी फैजान मुजफ्फर की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में घायल एक आम नागरिक की भी मौत हो गई। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि G7 देशों के सम्मेलन में पर्यावरण मामले पर चर्चा संतोषजनक स्थिति में नहीं कही जा सकती। अमरीका ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो पेरिस में हुए समझौते का पालन करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि वो इस मामले पर अगले हफ्ते फैसला करेंगे। मर्केल ने कहा कि हालांकि सम्मेलन में व्यापार को लेकर सख्ती के साथ चर्चा हुई, लेकिन सम्मेलन में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई। श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों की मदद के लिए मेडिकल टीम और राहत सामग्री लेकर गया भारतीय नौसेना का पोत श्रीलंका पहुँच गया है। श्रीलंका ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की थी। बाढ़ से कालूतारा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग लापता हैं। करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, नंदिनी नाम की महिला ने जानकारी दी। हमारा सारा सामान पानी में डूब गया, हमारा रसोई घर बाढ़ के पानी में बह गया, हमारे पास जो कुछ भी था वो सब तबाह हो गया। ये थे बाढ़ प्रभावित नंदिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सेना के मुताबिक पश्चिमी मूसल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तड़के शुरू हुए अभियान में उसे अहम कामयाबी मिली है। अधिकारियों के मुताबिक पुराने शहर के करीब सेना ने 3 प्रमुख इलाकों में बढ़त हासिल की है। सरकार ने आम लोगों से कहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके छोड़ दें, लेकिन मूसल से मिली रिपोर्टों के मुताबिक वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहे आम लोगों को चरमपंथी मार रहे हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड की पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ नस्लीय भेदभाव करने वाले व्यक्ति को रोकने की कोशिश में 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार को एक ट्रेन में हुई। पुलिस के मुताबिक महिला मुस्लिम मालूम हो रही थी। पुलिस सार्जेंट पीट सिम्पसन ने बताया कि इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल भी हुआ है। उन्होंने बताया, संदिग्ध ट्रेन में सवार था, वो बहुत कुछ बोल रहा था। इनमें से कुछ बातें नफरत भरी थीं। इस दौरान कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। संदिग्ध ने उन पर हमला कर दिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गए। ये थे सार्जेंट पीट सिम्पसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक आत्मघाती कार हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आम लोग हैं या फिर सुरक्षा के जवान, इसे लेकर विरोधाभासी रिपोर्टें मिली हैं। घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक हमला खोज शहर में बस स्टैंड के करीब हुआ। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दुनिया भर में ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा करने वाले लोगों को व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश एयरवेज के मुताबिक ये दिक्कत कंप्यूटर सिस्टम की नाकामी की वजह से आ रही है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी इंडिया बोल, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं, 1811-7000 और 1811-2007001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन, स्वागत आपका, और स्वागत हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फ़ोन पर, फेसबुक पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुन रहे हैं।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
3 साल एक दिन पुरानी ये आवाज़ खूब पहचानते हैं आप। 26 मई 2014 से आज 27 मई 2017 यानी मोदी सरकार बनने के 3 साल एक दिन बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। इन 3 साल में मोदी सरकार ने क्या हासिल किया, कितना दम है मोदी सरकार के दावों में, और क्या हुआ उन वादों का जो मोदी सरकार ने 3 साल पहले किए थे। चर्चा की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
वंदे मातरम की धुन, उस पर चलता हुआ मेक इन इंडिया का इस्पात का शेर, हॉल में बैठे विदेशी मेहमान और नरेंद्र मोदी का भाषण।
वी आर कमिटेड टू मेक इन इंडिया एन इजी प्लेस टू डू बिजनेस।
कितना सफल रहा है भारत को एक ऐसे केंद्र के तौर पर उभारने का सपना जहां कंपनियां माल तैयार करें और वो भारत से दूसरे मुल्कों को सप्लाई हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक निर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश पिछले साल तक उस स्तर को नहीं पार कर पाया था जहां वो साल 2011 और 12 में हुआ करता था। अर्थशास्त्री सुजान हाजरा कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर निर्माण क्षेत्र में ओवर कैपेसिटी है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, साथ ही 2007 और 8 के वैश्विक आर्थिक मंदी का असर अभी पूरी तरह से गया नहीं।
कुछ इंटरनल भी इश्यूज है, पिछले कुछ सालों से बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है काफी लो रहा है। 2006 में 75% ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट यूज टू कम फ्रॉम बैंक, आज का दिन में ये 25-30% हो गया है। और बैंक का क्रेडिट ग्रोथ लो होने का वजह से वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में इम्पैक्ट होता है। दूसरा बात यह है कि जो कंडीशंस फॉर डूइंग बिजनेस होता है, कितना जल्दी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, कितना जल्दी आप गवर्नमेंट का साथ लाइसेंस रिक्वायरमेंट और जो परमिशन रिक्वायरमेंट होता है वो कितना जल्दी काम करता है, इसमें ज्यादा हद तक जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जबकि बहुत सारे लिबरलाइजेशन किए हैं, बट स्टेट लेवल में ये सब रिफॉर्म हर स्टेट में नहीं हुआ है।
क्या रेटिंग के प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं मेक इन इंडिया एक योजना है जिसकी प्रगति जारी है। सबनवीस कहते हैं उद्योग क्षेत्र में क्षमता का महज 70% इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये कम से कम 85% तक होना चाहिए, और जब पहले से ही मौजूद इंडस्ट्री की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो उद्यमी के लिए नया उद्योग लगाना फायदे का सौदा नहीं।
Consumers have not been spending in the last few years, primarily on account of high inflation, income not rising. So when we were spending more money,
महंगाई की वजह से कंज्यूमर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। जब वो खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो जाहिर है दूसरी चीज़ों पर खर्च करने को उनके पास कम पैसे बचते हैं। इसी वजह से बाजार में प्रोडक्ट्स की मांग कम रही है। सरकार बजट घाटे को कम करने के चक्कर में मूलभूत ढांचे पर उतना खर्च नहीं कर रही जितना किया जा सकता है। अगर सरकार इस खर्च को बढ़ाती तो निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता था। अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के शब्द। पूर्व वित्त मंत्री के आर्थिक सलाहकार और जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी का भी मानना है कि मोदी सरकार खुद ही इस योजना को लेकर सीरियस नहीं। गुरुस्वामी 36 रफेल लड़ाकू विमानों के फ्रांस के साथ हुए सौदे का हवाला देते हैं और कहते हैं कि सरकार ने सौदे में कंपनी के कुछ काम को भारत में लाने की शर्त क्यों नहीं रखी, जैसा कि पहले के सौदों में होता रहा था। नोटबंदी ने भी मोहन गुरुस्वामी के मुताबिक निवेश पर असर डाला है।
डिमोनेटाइजेशन पॉलिटिकली सही होगा, मगर दुनिया में सारे लोग गिलती इतनी बेवकूफी अगर कर सकती है कोई सरकार, तो हम उस सरकार में जाके कैसे उनके साथ काम करेंगे। कोई बिना सोचे जाने कोई 86% करेंसी निकाल दिया मार्केट से और नए नोट भी तैयार नहीं किया। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप वोट हासिल कर लेंगे, कहेंगे कि हम अमीरों पे मार किया, तो अलग बात है, मगर दुनिया में तो कोई और समझ निकलती है ना इस पे।
सत्ता के केंद्रीकरण और सक्षम कामगारों की कमी को भी भारत में कम निवेश होने की वजह बताया जा रहा है। तो क्या मेक इन इंडिया पूरी तरह से नाकाम रहा है? सब नवीस कहते हैं,
इन द पास्ट वी हैड इश्यूज ऑफ एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द वेरियस,
पहले प्राकृतिक संपदाओं के आवंटन में इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने कोयला, 3G और दूसरे आवंटनों के जरिए इसको दूर किया है, साथ ही पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिल गई है। ये थे अर्थशास्त्री सब नवीस के शब्द, मगर तीनों अर्थशास्त्री मेक इन इंडिया के बारे में एक बात पर इत्तफाक रखते हैं।
एक तो ये इंटेंशन है,
फिर से बेटा मेक इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाटएवर कैन बी डन, एंड द आंसर इज डेफिनेटली नो।
इनकी जो सरकार की वो जो मॉडल है, ज्यादा बोलना काम कम करना।
ये रिपोर्ट थी बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की, और इसमें जो आखिरी आवाज थी वो थी जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी की, जो कह रहे थे मोदी सरकार का मॉडल है ज़्यादा बोलना काम कम करना। बात हो रही थी मेक इन इंडिया की। इससे पहले कि हम श्रोताओं से बात करें, वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन, मोदी सरकार के 3 साल, कल हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और भारत में जितनी भी भाषाओं में अखबार निकलते हैं, पहले पन्ने पर सरकार का विज्ञापन, विज्ञापन में नारा जो गीत की शक्ल में यहाँ वहाँ खूब सुनाई दे रहा है।
दम होना चाहिए भाई, एक फैसले पर काले धन वालों की नींद उड़ जावे और बेनामी संपत्ति वाले भी बेचैन हो उठे। इधर आप एक फैसला लें और उधर सरहद पार आतंकवादियों को मुक्की खानी पड़े।
क्या ये टैक्स वो टैक्स? ना जी ना, अब एक देश एक टैक्स, GST।
जितने पुराने उलझे मुद्दे उतने तेज और सुलझे फैसले,
जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने कड़े फैसले,
तभी तो साथ है विश्वास है हो रहा विकास।
भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन, राधिका जी, कोई सरकार ये नहीं बताती कि वो किन मोर्चों पर विफल हुई है, और ऐसा तो होता नहीं कि सफलता ही सफलता हो। सफलता के तमाम दावे और हमने सुन लिए, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कह रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इन 3 सालों में कहीं कोई चूक नहीं हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर देखें तो इनके जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, तमाम सारे जो घड़ी घड़ी अनाउंस करते हैं, उसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूँगी, स्वच्छ भारत अभियान। अब आपको वो कोई विशेष स्टेटिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ आपकी नज़र अगर फैलाते हैं बड़े शहरों में, दिल्ली में ही आप देखेंगे कि कूड़े के जो कूड़े के भंडार भरे हुए हैं, और दिल्ली में खासकर आम आदमी सरकार और सेंटर के बीच में जो नोकाझोंकी, जो जो तमाम डिफरेंसेस थे, उसके वजह से भी ये सफाई का काम रुक गया। लेकिन ये बात नहीं है, हाल ही में मैं लखनऊ गई थी, लखनऊ में देखा, योगी सरकार जब स्थापित हो गई उसके पश्चात वो फिर कूड़े का भंडार जगह जगह, मैं छोटे शहरों की जिक्र बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो हम तो सवाल उठाएंगे कि ये स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ। दूसरी बात, काला धन जो नोटबंदी के साथ सीधा सीधा जुड़ा है, और जो इनका बहुत ही अहम मुद्दा है ये सरकार की और बीजेपी की, लेकिन आज तक हमें RBI क्यों नहीं कह रहा है कि कितना काला धन प्राप्त हुआ है नोटबंदी के पश्चात, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है वो मुझे बहुत यहाँ ये सरकार में दिखाई देती है। शेयर करिए पार्लियामेंट के साथ, आप इतने तो विज्ञापन दे रहे हैं, मन की बात कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र करिए कि आपके काला, आपने कितना काला धन पाया है देश के अंदर से और विदेशी खातों से, तो इसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। और तीसरा, आप मैं कह रही हूँ जो मेक इन इंडिया, वो भी बहुत जोरों शोरों से इसकी ऐलान हुआ है मेक इन इंडिया, लेकिन आपने कुछ अर्थशास्त्रियों से बात किया, किसी से भी आप बिजनेसमैन से बात करिए, वो सब कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। जो यूपीए के ज़माने में मुझे याद है रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जोरों शोरों से आगे चल रहा था, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, वो सब एकदम ठंडा हो गया है। एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैंने खुद कई सेमिनार्स और उनके मीटिंग्स अटेंड किए हैं जहां इन्होंने बहुत जोर दिया एसएमईज पे, और गुजरात में ऐसे कुछ कदम भी उठाए जिससे ये स्मॉल एंड छोटे छोटे उद्योगों को या मध्यम साइज के उद्योगों को काफ़ी उन्होंने फिलिप दिया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये जो जॉबलेस ग्रोथ है, इसका अर्थ यही है कि मैन्युफैक्चरिंग ठंडा पड़ा हुआ है। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो आपको नौकरियां कहाँ से आ रहे हैं, और उल्टा ये आईटी सेक्टर जो बहुत शान माना जाता है भारत का, उसमें भी जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तो बात कर रहे हैं कि इतने प्रतिशत में बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी, लेकिन फिर नौकरियां को क्या हो रहा है, इतना छटनी क्यों हो रहा है, इस सबका जवाब देना चाहिए ना सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोरम में।
सरकार कब और कैसे कहां पे इन सवालों का जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल श्रोताओं से बात करते हैं। 1811-7000 और 1811-7001 ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
हाँ जी, अब्दुलजीत भट्ट बोल रहा हूँ, सुरन कौर से, जम्मू कश्मीर से।
भट्ट साहब जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं आप, रखें अपनी बात रखें।
सर एक बात कहूँ कि एक शायर ने कहा कि अलाज दर्द दिल मसैया तुमसे हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। हमारी जो भारत में हमारे 47 से बाद आज तक अगर कोई प्रधानमंत्री आए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इन्होंने जो काम किए हैं वो इंदिरा गांधी भी नहीं कर सकी, और कोई नहीं। जो अभी देखो बांग्लादेश में जो इनकलेब थे, किसी ने उनको ठीक नहीं किया, तो इन्होंने कितना जुर्म से जाके लोगों को नागरिकता दिलाई। फिर फौज के जो रिटायर्ड लोग थे 50 साल से रो रहे थे वन रैंक वन पेंशन, तो देखिए इन्होंने आके वो किया। फिर दूसरे देशों के साथ इन्होंने हिंदुस्तान का अपना एक ये बताया कि हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ जाते हैं। जब पहला कोई प्रधानमंत्री
जी भट्ट साहब कश्मीर से बोल रहे थे, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई। और कौन श्रोता इस समय हमारे साथ हैं?
बोलिए
जी, बोलिए।
नमस्कार सर, मैं संतोष कुमार गांव चिकना प्रखंड चरो सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ सर।
सीतामढ़ी बिहार से, रखें अपनी बात कार्यक्रम में।
कहे कि सर जब से मोदी सरकार बना है तब से सर रेलवे में वैकेंसी नहीं आया सर।
अच्छा, और बताइए।
रेलवे में कोई बहाली नहीं आया सर। इससे पहले यूपी सरकार थी तो हर साल 30,000-40,000 वैकेंसी आती थी सर। उसके बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से वैकेंसी नहीं आ रही।
बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए कार्यक्रम में। और कौन श्रोता हमारे साथ है इस समय?
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी मैं महदीर साहब बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा से, नौगांव आदाब से बोल रहा हूँ सर।
जी रखें अपनी बात।
सर मेरा कहना तो ये है, हम कलयुग में जी रहे थे सरकार, अब हम तो सतयुग में आए हैं सर। और मतलब कि ना ही अब तो सारी नौकरियां ही नौकरियां हैं हमारे लिए, ना देश की सीमा का उल्लंघन हो रहा है, ना सिद्धार्थ नगर क्या है उसमें कोई रेप हो रहा है, ना कोई मर्डर हो रहा है हमारे लिए। तो अब सब में सब कुछ ओके हो गया सरकार, हमारे लिए तो कोई बुराई नाम की चीज ही नहीं रही। और शब्बीरपुर में कुछ हुआ, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ, ना आग लगी, ना कोई बेचारा जाटम मरा, कोई काम ही नहीं हुआ, गलत काम नहीं, सारे सही काम हो रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं सीमा का उल्लंघन भी नहीं हुआ।
लोकतंत्र की ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें सबको अपनी बात रखने का हक होता है, फिर वो चाहे हमारे श्रोता हों या विपक्ष, सब अपनी बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं मोदी सरकार के 3 साल के दावों पर कांग्रेस का क्या कहना है।
कांग्रेस का काम अपना नाम, 3 सालों से यूपीए की परियोजनाएं, मंगलयान से लेकर पावर ग्रिड, गैस पाइपलाइन, माता वैष्णो देवी रेल परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग का फीता तो काट रहे हैं मोदी साहब, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया का ज्ञान बांट रहे हैं।
कांग्रेस का विज्ञापन है ये, इसमें ये कहा गया है कि काम कांग्रेस ने किए, मोदी सरकार ने बस फीते काटे हैं। राधिका जी, कितनी सच्चाई है इसमें?
जैसे अभी हाल ही में जो ब्रह्मपुत्र ब्रिज जो सबसे लंबी है, आपको मानना पड़ेगा कि जो काम है वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में शुरू हुआ, या आप दूसरी ले लें वो जो टनल से जो ट्रेन गुजरता है कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर, या मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कटरा से श्रीनगर, उसका भी जो है वो फाउंडेशन और बल्कि थोड़ा काम भी मनमोहन सिंह के सरकार में शुरू हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी सरकार कुछ भी काम अपने बलबूते पे नहीं की है, उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस किए हैं, कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अहम काम हैं जो पिछले सरकार में आरंभ हुआ था और किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो काम तो ये पूरा कर रहे हैं। अभी अखिलेश की लखनऊ मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मैं वो काम भी ये पूरा करने ही जा रहे हैं और किसी भी दिन इसका उद्घाटन होगा।
तो सरकार में जब आप हैं तो आपको काम करना ही होगा।
काम करना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपका ध्यान भी नहीं बटना चाहिए। ये जो सरकार है ये बहुत अधिक उम्मीदों के साथ स्थापित हुई है, ये मोदी जी की सरकार। और वो क्या थे? वो सब विकास से जुड़े थे, नौकरी दिलाने से जुड़े थे, आर्थिक सुगून से जुड़े थे, आर्थिक प्रॉस्पेरिटी से जुड़े थे। तो हमें अगर जज करना है ये सरकार को तो इन्हीं 4-5 यार्डस्टिक से जज करना होगा।
पर सरकार तो लगातार ये दावे करती है कि रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं और रोजगार लोगों को मिल रहा है। शीशे के उस पार बैठकर स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं तिलक राज भाटिया और कह रहे हैं कि श्रोताओं के फोन लगातार बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कौन है इस समय हमारे साथ।
मोहम्मद शफी जागल, जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी।
मोहम्मद शफी साहब, रखें अपनी बात, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका।
सर, मिनिस्ट्री लेवल पर रिश्वत और घोटाला खत्म हुआ, छोटी सतह पर रिश्वत अभी भी बाकी है, डिफेंस के लिहाज से मुल्क ताकतवर हुआ, मोदी सरकार ने किया, बुजुर्गों की पेंशन जो है बढ़ाई गई है, सब्सिडी में गरीब लोगों को जो है तरीका अच्छा किया है। मनमोहन सिंह एक कमजोर वजीर आजम थे, मोदी साहब जो है ताकतवर वजीर आजम साबित हुए, हिंदुत्व का तरीका जो है।
भट्ट साहब की आवाज शामिल हुई कार्यक्रम में, रखी उन्होंने बात। और सुनते हैं कौन श्रोता हमारे साथ इस वक्त हैं।
हेलो
जी, कौन साहब हैं?
जी, मैं वीरेंद्र, गांव बिराखेड़ी, जनपद सहारनपुर से।
सहारनपुर
मैं सबसे पहले तो कश्मीर से अजीज भट्ट साहब को और नरेंद्र दामोदर दास मोदी सैल्यूट करता हूँ। ऐसे पॉजिटिव इंसान, ऐसे पॉजिटिव पीएम बार बार इस देश को नहीं मिलते, ये देश का सौभाग्य ही है। सरदार पटेल आयरन मैन थे तो ये स्टील मैन है। इन्होंने जो काम किए, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और 60 साल की गंदगी एक दिन में चल जाएगी। पहले जो भ्रष्ट लोग थे उन्होंने,
ये लगता है फिर संपर्क टूट रहा है इनसे, गंदगी की बात कर रहे थे और मोदी सरकार की बात कर रहे थे। राधिका जी, आपको नहीं लगता कि लव जिहाद, एंटी रोमियो स्क्वाड, गोरक्षा, घर वापसी, राम मंदिर और हिंदू राष्ट्रवाद जैसे कुछ मुद्दे इन 3 सालों में सरकार के लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहे हैं जितना कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमी, डिफेंस?
बिल्कुल, बीजेपी जो है हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जो बीजेपी की जो पेरेंट है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और मोदी जी खुद प्रचारक रहे कई साल, तो आरएसएस की जो भी एजेंडा है मुझे लगता है ये सरकार बहुत अच्छी तरह सिस्टमैटिक तरह से उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब भी कोई इंसिडेंट हो जाए जैसे गौरक्षा के संबंध में या लव जिहाद के संबंध में, तो सरकार बोलेगी कि भाई ये सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन एक्शन जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। एक्शन माने आप जो कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए वो तो नहीं होता है। हाल ही में जो पहलू खान का जो हुआ
राजस्थान
में, तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि जो उनके कल्प्रिट्स हैं, हाँ कुछ लोगों को पकड़ा है लेकिन जो सजा देनी चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए वो उस कठोरता से नहीं मिला है जो
जी। और इस समय कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं।
हाँ सर
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं चंदन कुमार बोल रहा हूँ सर, बिहार से, गया जिले से बोल रहा हूँ।
बिहार के गया जिले से चंदन कुमार बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, रखें अपनी बात।
सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोदी सरकार के जो कार्य है सर, इसको कंपैरिजन हम पिछली कांग्रेस सरकार से करके देखना उचित समझते हैं, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देश का जो मतलब शर्मसार हो चुका था सर पूरे वर्ल्ड वाइड में।
राधिका जी आपने देखा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तुलना कर रहे थे एक श्रोता, आपको लगता है कि इस सरकार का इन 3 साल में कोई एक बड़ी सफलता जिसे हम कह सकें?
बिल्कुल, ये है जो करप्शन या नॉन करप्शन है, ये बहुत बड़ी सफलता है। और हर चुनाव में आपके जो श्रोता हैं जो बोल रहे हैं, वही हमें लोगों से, आम लोगों से भी सुनने को मिलता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अभी जो दिल्ली में लोकल बॉडी इलेक्शंस हुआ, कि 3 साल हो गए हैं और एक भी स्कैम इस सरकार को छुआ नहीं, और उसके बावजूद काम हो रहा है। आप सड़क निर्माण की बात करें या रेलवे में भी कुछ हो रहा है काम, लेकिन स्कैम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि काम बड़े बड़े पैमाने में काम हो सकते हैं स्कैम के बिना, भ्रष्टाचार के बिना। और जो नीचे निचले स्थल पे हैं, जो आफ्टरऑल जो भ्रष्टाचार का संदेश है वो ऊपर से ही नीचे तक आता है, क्योंकि आप सख्ती से ऊपर से एक संदेशा दे रहे हैं, तो नीचे स्तर पे भी वो पेटी करप्शन जो कहते हैं वो कम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हुआ, लेकिन कम हुआ है।
तो ये मोटे तौर पे माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि इन 3 साल में मोदी सरकार की यदि कोई उपलब्धि है तो वो भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया
अभी
है।
तक तो सामने नहीं आया है। हाँ।
अच्छा एक बात और बताइए कि संक्षेप में मोदी सरकार की इन 3 साल की एक सबसे बड़ी विफलता, सबसे जो बात चुभ जाती है कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया।
मैं तो कहती हूँ दो फ्रंट पे विफलता हुई है। एक तो आप जो कम्युनल हार्मनी, वो सबका साथ सबका विकास, उस पर थोड़ा फेल हुए हैं, क्योंकि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टारगेट हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि नौकरी नहीं, लोगों को नौकरी क्रिएट करने के बजाय छटनी हो रही है सब जगह, मैन्युफैक्चरिंग कमज़ोर है। तो यही मैं विफलता में यही गिनूंगी 3।
वैसे सच ये भी है कि ऐसी कोई सरकार नहीं हो सकती जो कुछ भी काम ना करे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरकार जो कुछ भी करे वो जय जयकार करने लायक हो, उसका हर बात का गुणगान किया जाए। तो जाहिर है कि सच जो है वो बीच में कहीं है, जिसे तलाशने की कोशिश लगातार होती हाँ, रहना चाहिए
जी।
इसके साथ ही थोड़ी देर में भारत में बजेंगे 8। अभी 2 दिन पहले की यह बात, कार्यक्रम था एक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने का अधिकार राष्ट्र के संरक्षण की बुनियाद है। ऐसे समय में जब सबसे ऊंची आवाज़ में बोलने वालों के शोर में असहमति की आवाज़ें दब जाती हैं, तो लगता है कि चर्चा जारी रहना चाहिए और इस बात की पड़ताल लगातार होती रहना चाहिए कि जो सत्ता में बैठा है वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनसे उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
बिल्कुल, राष्ट्रपति जी के शब्द बहुत ही टाइमली हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जो डिबेट और डिसेंशन वगैरह जो डेमोक्रेसी की बहुत ही अहम में बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं, वो कम होते जा रहा है। और इतना कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो उनके पसंद ना हो, तो डांटने लगते हैं।
इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं 8:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का शुक्रिया, और माफ़ी चाहेंगे उन श्रोताओं से जिन्हें हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके। वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन जी, आप स्टूडियो आई, चर्चा को सार्थक बनाया, आपका बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा होगी, लेकिन चलते चलते फेसबुक, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर नज़र डाल लेते हैं। मंगेश तिवारी हैं, ये लिखते हैं कि वादे तो थे 100 दिन में विदेशी कालाधन लाने के, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, दाऊद को पाकिस्तान से लाने का, राम मंदिर बनाने का, धारा 370 हटाने का, हिंसा अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का, लेकिन क्या हुआ, खामोशी है इसके बाद। राहुल पाठक लिखते हैं, मोदी जी ने 3 साल में 8,000 किलोमीटर लंबा हाईवे बनवाया, करोड़ों शौचालय बनवाए, 65 देशों से व्यापारिक रिश्ते बनाए। मोदी जी का काम बोलता है, क्योंकि काम दिखता है। मुझे लगता है कि अब घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं दे रही हैं, कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।